पांच तारीख को, अगले पांच तारीख को हम सब रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे अपने अपने घरों में, मंदिरों में। रामनवमी श्री राम के जन्मदिन है, यह हमारी एक ट्रेडिशन रहा है। जैसे आजकल आप बर्थडे मनाते हैं, तो पहले भी मनाते थे, पर उसकी जो बर्थडे का जो नाम, बर्थडे को सेलिब्रेट करने की जो तिथियां होती थी, वो तिथि या डेट के साथ उसके नाम जोड़ दिए जाते थे। जैसे कृष्णाष्टमी, कृष्ण के जन्मदिन जो 8 तारीख को, 8 तारीख मतलब इंडियन डेट में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 8 अष्टमी तिथि को, इसी तरह राम जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को, इसलिए हम इसे राम नवमी कहते हैं। अभी आपने नए साल मनाया भारतवर्ष के, भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपद, उस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ था चैत्र शुक्ल प्रतिपद को, और नवमी उनका जन्मदिन है। देवियों सज्जनों, जैसे आप पढ़ते हैं साइंस में और बाकी सब्जेक्ट में, आप थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसके प्रैक्टिकल करते हैं। अगर केवल थ्योरी पढ़ते हैं तो ज्यादा काम का नहीं होता है, केवल प्रैक्टिस करते हैं विदाउट नोइंग समथिंग, तो वो भी कोई यूजफुल नहीं होता है। जब आप किसी को समझते हैं फिर प्रैक्टिस में लाते हैं, एजुकेशन के कोई भी सिस्टम हो, तभी वो फुलफिल होता है। हमारे यहां ऋषि मुनियों ने यही परंपरा अपनाई कि आपको समझना है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, फैमिली में कैसे रहना चाहिए, ये सब आपके आपको शास्त्रों ने बताया, वेद से लेकर धर्मशास्त्रों से लेकर अलग अलग तरीके से बताया। पर हर व्यक्ति थ्योरी से नहीं समझता, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल बताना पड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने दूसरा ऑप्शन रखा कि इसको जिन लोगों ने प्रैक्टिस में किया है, अपने लाइफ में उतारा है, उनकी जीवनी पढ़ो। अब गीता पढ़ो, समझ में ना आए तो कृष्ण का चरित्र पढ़ो महाभारत में, तो गीता समझ में आ जाएगी। कृष्ण को चरित्र को ठीक से महाभारत में समझ लो, तो गीता ना पढ़ो तो भी जो समझना है समझ जाओगे। इसी तरह वेद आदि शास्त्रों को जिसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारा चरित्र कैसा हो, हमारा कैरेक्टर कैसा हो, उसको समझने के लिए अगर आप महापुरुषों के, महात्माओं की जीवनियों को पढ़ते हैं तो भी आपको उतना समझ में आ जाता है। उनमें से एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, जिनके जीवन के एक छोटी छोटी घटना भी आपको शास्त्र के अनुकूल चलने की प्रेरणा देता है, इसीलिए उनसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। आम आदमी कितना भी शास्त्र पढ़े, समझे, जाने, कहीं ना कहीं मर्यादाओं को तोड़ता है। मर्यादा मतलब लिमिटेशंस, जो हमें करना चाहिए, जैसा हमें जीना चाहिए, उसके बियॉन्ड जाकर के कुछ करने की हम कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे देते हैं। जैसे आजकल आप किसी को कहो प्रवचन में सुनाओ आप सत्य बोलो, बाहर निकल के बोलेंगे सत्य आज के जमाने में कौन बोलता है, कैसे बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बोल के जी नहीं सकता, पर हम अपने मन को बहलाने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं करना, हमारे अंदर वो गट्स नहीं है, वो डेयरिंग नेचर नहीं है, तो हम अच्छी चीजों को लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट करते हैं हजारों तरह के एक्सक्यूजेस दे करके। पर अगर आप राम की जीवनी पढ़ते हो वाल्मीकि के रामायण में, ये भी इंटरेस्टिंग है, आप किसके बारे में कौन सा बुक पढ़ते हैं। अब साइंस पढ़ने के लिए सड़क छाक बुक उठाते हैं, सड़क छाक बुक उठाते हैं, या किसी अच्छे साइंटिस्ट की बुक लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ काना सुना गूगल सर्च करके करते हैं, या किसी अच्छे हिस्टोरियन की बुक पढ़ते हैं, वो भी मैटर करता है। इसी तरह राम की या कृष्ण की जीवनी पढ़नी हो तो राम की जाननी है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ने की जरूरत है, न कि आप रामायण के नाम पर इधर उधर 200 साल पहले 400 साल पहले लिखे गए किताबों को रामायण समझ के बैठ जाएं, तो राम के नाम पर आप वैसे ही उठपटांग बातें करते फिरेंगे। इसी तरह कृष्ण के जीवन को समझना है तो आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा, महर्षि व्यास का लिखा हुआ, न कि 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में लिखे गए अनेक अनेक पुराणों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है उसकी जो ऑथेंटिसिटी बुक है वो जरूरी है। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो श्री राम के जीवन को देखते हैं वाल्मीकि रामायण में, इतना निष्कलंक है, सारी कष्टों को अपने ऊपर झेलने के बावजूद कहीं अपनी मर्यादाओं में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राम की चरित्र शुरू करने से पहले रामायण के लेखक के बारे में चर्चा करनी जरूरी है, नहीं तो अन्याय होगा, जिसके कारण आज हम राम को जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि एक दिन नहाने के लिए सरजू नदी के किनारे पहुंचे शिष्यों के साथ, और उन्होंने देखा एक शिकारी, दो क्रौंच पक्षी, क्रेन बर्ड, क्रेन जिसको कहते हैं, एक दूसरे से प्यार में मग्न थे, कपल थे, और शिकारी ने बाण मार के उन कपल में से एक क्रेन को मार डाला, एक क्रौंच पक्षी को मार डाला। वाल्मीकि ने देखा, ऋषि थे, सहृदय थे, अच्छे हृदय वाले, दिल वाले, तो उनका दिल पिघल गया, उनको गुस्सा आया, शोक में इतने ज्यादा परेशान हो गए, दुख में उनके मुंह से अनायास ही विदाउट एनी एफर्ट शाप निकल गया उस शिकारी के लिए। पर उस शाप को जिस अंदाज में बोला वो एक लिरिक बन गया। वो शाप ये था, मानिषाद त्वमगम शाश्वती समाहा, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती हि समाह, यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधि काममोहितम्। बोला ये शिकारी, तुम जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने एक ऐसे पक्षी को मारा जो अपने सुख में मग्न था, और जो उन्होंने शाप दिया उस शाप को बोलते समय जिस तरह के नेचुरली उनके मुंह से जो वाक्य निकला, जो सेंटेंस निकला, वो इतना लिरिकल था, इतना पोएटिक था, उनको तो पता नहीं चला। उनके शिष्यों ने, उनके साथियों ने उनको बताया कि आपका शाप क्रोध से ज्यादा श्रुति मधुर था, सुनने में मिठास से भरा था। वाल्मीकि को पता चला कि उनके अंदर, जिसको आजकल आप कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, बाय नेचर प्राकृतिक रूप से कवि होने की कला है, तो उनको उनके साथियों ने, मित्रों ने, शिष्यों ने कहा अब काव्य लिखिए। काव्य लिखें तो कोई अच्छा सब्जेक्ट चाहिए। आजकल भी जो राइटर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं पहले किस पर लिखें, कैसे लिखें। वाल्मीकि चाहते थे अगर लिखना ही है, कोई अच्छा कैरेक्टर हो तो उस पर लिखूं। अचानक नारद मुनि उनको एक दिन मिले और वाल्मीकि ने नारद से पूछा कोन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। नारद जी आप घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। देखिए नारद जी की कैरेक्टर को समझना है तो आजकल के मीडिया को देखिए। आप कह सकते हैं जो मॉडर्न मीडिया का जो एंशिएंट फॉर्म था वो नारद था। नारद एक कैरेक्टर है या एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन था, जैसा भी आप समझे। उनको हर चीज के बारे में पता होता था। तो वाल्मीकि ने पूछा, बताइए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिंदा हो। मैं किसी मरे हुए आदमी पर लिखना नहीं चाहता हूं, हिस्ट्री पर नहीं लिखना चाहता हूं। मैं कोई सुपरनेचुरल चीजों पर नहीं लिखना चाहता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अलाइव हो, जीवित हो, मनुष्य हो, पर उसमें ये कैरेक्टर हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, सत्य बोलने वाला हो, अपने डिटरमाइंड हो, अपने जो बोला प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करने में आगे रहा हो, जिसका कैरेक्टर बढ़िया हो, सभी प्राणियों से जो प्रेम करता हो, जो विद्वान भी हो, स्कॉलर भी हो, पावरफुल भी हो, देखने में सुंदर हो, धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिवान। जो धर्म को समझता हो और आचरण में लाता हो, सत्य को जिसने जीवन में उतारा हो, प्रजाओं का ख्याल रखता हो, फेमस हो, पवित्र हो, प्योर हार्टेड हो, जितेंद्रिय हो, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना जानता हो, और जो समाधिवान हो, जो योगी जैसा जीवन जीता हो, सर्वदा विगत सद्भि समुद्र इव सन् सिंधुभि आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियों से घिरा हुआ समुद्र बड़ा शांत रहता है, इसी तरह जो व्यक्ति सारे संकटों में घिरे होने के बावजूद भी शांत रहता है, ऐसा योगी सत जैसा व्यक्ति कोई हो तो आप मुझे बताएं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक व्यक्ति में सारे अच्छे गुण मिल जाए, दो चार मिल जाएंगे, एक आधा मिल जाएंगे, किसी में एक अच्छा मिलेगा तो चार बुरे गुण मिलेंगे, चार अच्छे मिलेंगे तो दो बुरे मिलेंगे, और सारे अच्छे गुण मिलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है। नारद ने सोचा और बोला कि ये जो आपने बताया ये तो बड़ा रेयर टाइप के पर्सन आप ढूंढ रहे हैं, वैसे ढूंढ रहे हैं जैसे भारत की माताएं अपनी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढते हैं, या लड़के जैसे इंडियन लड़के अपने लिए लड़की ढूंढते हैं, पत्नी ढूंढते हैं। सर्वगुण संपन्न हो पर मेरे बारे में कुछ पूछे नहीं, मैं जैसा हूं चलेगा, शराब पीता हूं, कम कमाता हूं, कोई बात नहीं है, बस लड़की होनी चाहिए सर्वगुण संपन्ना, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, दुर्गा नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी सरस्वती सब होनी चाहिए। अब ये तो इम्पॉसिबल है, पर तब भी मेरे पास, मेरे दिमाग में एक व्यक्ति दिख रहा है। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः, जो तुमने गुणों को बखाना वो बड़े रेयरेस्ट गुण होते हैं। मुने वक्षाम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नर, तब भी मेरे नजर में एक आदमी दिखता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ है, रघुवंश भी कहते हैं, रामो नाम जनेहि श्रुतः, राम के नाम से प्रसिद्ध है पब्लिक में, नियतात्मा महावीर्यो, बहुत योगी जैसा जीवन है, जीवन को संयमित रखता है, महान वीर है, द्युतिमान धृतिमान वशी, हर तरह के गुणों से पूर्ण है, कोई एक आधा कम बहुत होगा पता नहीं, पर मोस्ट ऑफ क्वालिटी जो आपने बताया उसमें मिल जाएगा। दिव्यों सज्जनों, समय है कि राम के ऑलमोस्ट सारी घटनाएं घट चुकी हैं, राम वापस आकर के रावण को मार करके राज्य कर रहे हैं, ये तभी की घटना है। राम राज्य चल रहा है, राम राजा हैं, ये तभी की घटना है जो वाल्मीकि के साथ ये घटना घटती है। तो वाल्मीकि को तब पता चलता है कि राम नाम का एक ऐसा व्यक्ति है, अब वो उस पर रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, उसकी घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं काव्य लिखने के लिए, और उसके बाद वाल्मीकि जिस काव्य को लिखते हैं उसका नाम है रामायण, रामचरित्र है ना, राम की घटना जिसमें वर्णित है। देवियों सज्जनों, या तो आप किताब पढ़ के सीखिए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, आदर्श जीवन, आइडियल लाइफ, या राम को चरित्र को पढ़िए। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तवे तत्तदेवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुगच्छति। जो महान लोक होते हैं वो जैसे जैसे काम कर जाते हैं बाकी लोग वैसा वैसा फॉलो कर जाते हैं, ये महान लोगों का लक्षण होता है। राम उन महान चरित्रों में से एक है जिसका हर एक छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताने लायक है, मां बाप को बताने लायक है, भाई बहनों को बताने लायक है। किसी भी कैरेक्टर फैमिली में सोसाइटी में कमजोर पड़ता दिखे तो उसे राम की चरित्र सुनाएं, उस कैरेक्टर को ठीक करने के लिए। बच्चे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो भी राम का चरित्र उनके लिए है। मां बाप कैसे होना चाहिए वो भी राम के चरित्र से पता लगता है। एक पति को कैसा होना चाहिए वो भी राम के चरित्र से पता लगता है। एक भाई को कैसा होना चाहिए वो भी राम के चरित्र से पता लगता है। एक राजा को कैसा होना चाहिए वो भी राम के चरित्र से पता लगता है। एक शत्रु को कैसा होना चाहिए वो भी राम के चरित्र से सीख सकते हैं। एक मित्र को कैसा होना चाहिए वो भी राम के चरित्र से सीख सकते हैं। शत्रु का उदाहरण याद आया, आपने याद आया, रावण को राम मार चुके हैं, रावण मर चुका है लंका के युद्ध में। विभीषण, राम, लक्ष्मण रावण के पास पहुंचते हैं, मरने से पहले बाण खा करके गिरा पड़ा है राम, उसके पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप मेरे शत्रु थे तो मरना मेरा कर्तव्य था, मैंने इसीलिए मारा, पर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब जाति से नहीं कह रहा हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञानी हैं, मैं तो इतना ज्ञान नहीं जानता हूं, आप पॉलिटिक्स में भी बहुत माहिर हैं, आप जाने से पहले अगर कुछ ज्ञान देना चाहें मुझे दे सकते हैं। रावण से राम शिक्षा लेते हैं, रावण के मरने के बाद विभीषण को आदेश देते हैं, इनकी यथोचित जैसा इनके संस्कार होना चाहिए अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। विभीषण कहते हैं, ये रावण आपका राक्षस है, ये आपकी पत्नी को हड़पा था, आपके साथ इतने अन्याय किया, अत्याचार किया, आप चाहते हैं कि इसको सम्मान के साथ इसका संस्कार हो। राम कहते हैं, शत्रु और मित्र वे लोगों के व्यवहार से होता है, हर व्यक्ति को उसके प्रति प्रेम और सम्मान भाव होना हर मनुष्य का कर्तव्य है। शत्रु वो कर्मों से था, उसका फल मैंने उसको दे दिया, पर रावण भी एक मनुष्य है, उसको उतने ही सम्मान का हक है, तो उसके पूरे सम्मान के साथ संस्कार होना चाहिए। राम खुद अपने निरीक्षण में रावण के सारे अंत्येष्टि संस्कार पूरा कराते हैं, पूरे सम्मान के साथ विभीषण को राजा घोषित करते हैं। देवियों सज्जनों, इसलिए राम को रामो ही विग्रहवान धर्म कहा जाता है। अगर धर्म क्या है समझना है तो धर्म का कोई फॉर्म हो, कोई पर्सोनिफिकेशन करने की आप कोशिश करें तो राम उसका उदाहरण है। कि राम का चरित्र देखें, धर्म अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बचपन में जैसे प्राचीन काल में व्यवस्था थी, सब बच्चे जैसे गुरुकुल में पढ़े, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल से पढ़कर आए, दोबारा विश्वामित्र ले गए उनको और कुछ युद्ध विद्या सिखाने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। उसके बाद चारों भाइयों की शादी हुई, घर आए, 12 साल तक शादी के बाद राजभवन में बिताए। दो चार इंसिडेंट आपको बताएंगे कि राम क्यों महान है, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है। दशरथ बुजुर्ग होते चले गए, उनको लगा कोई युवराज, युवराज मतलब क्राउन प्रिंस, जिसको बाद में राजा बनना है, घोषित करने की जरूरत है। मंत्रियों से उन्होंने डिस्कस किया, प्रजाओं से फीडबैक लिया, बाकी लोगों से फीडबैक लिया। राम वैसे भी लीगली एलिजिबल है क्योंकि सबसे बड़े बेटे हैं और गुण से कर्म से हर मामले में राजा होने के योग्य हैं। तो दशरथ ने घोषणा की कि राम युवराज बनेंगे। डेट फिक्स हो गई, चैत्र शुक्ल प्रतिपद प्रचार हो गया और कई कई को पता चला। मंथरा ने, जैसे स्टोरी आपको पता है, मंथरा के कहने पर कई कई ने वर मांगा कि राम को जंगल जाना है, 12-14 साल तक जंगलियों की तरह रहना है, भरत को राजा बनना है। दशरथ ने जब घोषणा की राम को राजा बनना है, सुमंत्र राम को बताने गए कि कल आपका राज्याभिषेक है, सुबह आप तैयार रहिए, आप युवराज बनने जा रहे हैं। ये सुमंत्र की भाषा है, वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं। जब रात भर सारी इंसिडेंट, सारी ही मौसम ही बदल गया, कई कई रोने पिटने लगी, दशरथ असहाय होकर बेहोश होकर पड़े हैं, कैसे राम को बोले कि तुम जंगल जाओ, भरत राजा बने। तो सुमंत्र दौड़े दौड़े गए राम के पास कि स्थिति ऐसी है, तुम्हारे पिताजी बेहोश पड़े हैं, मूर्छित हैं, कई कई अड़के बैठी है, क्योंकि उन्होंने दो वर देने की प्रॉमिस किया था दशरथ ने। राम दौड़े दौड़े आए कई कई के भवन में, देखा पिताजी बड़े परेशान और जिंदा मुर्दा के बीच में पड़े हुए हैं, होश हवाश नहीं है, समझ नहीं पाते हैं कि क्या रिएक्ट करें ना करें। कई कई रूठ के बैठी हैं। उन्होंने माता से पूछा कि बोलिए क्या बात है। कई कई ने बोला कि तुम्हें बताकर क्या फायदा, तुम्हारे पिता की तरह तुम भी तो झूठे ही निकलोगे, जो बोलोगे वो मानोगे नहीं, क्यों तुम्हें बताऊं। राम ने बोला यकीन रखो, बताओ मुझे। कई कई ने बताया ये बातें हैं। राम ने कहा इतनी सी बातें तो ठीक है, मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा वन पर। कई कई को लगा ये मजाक कर रहे हैं। राम ने बोला रामो द्वीर नभाषते, मैं वो राम हूं जो जीवन में कभी एक बार वाक्य को रिपीट नहीं करता हूं, या जो बोल दिया उसमें कोई कमा फुल स्टॉप लगा के इंटरप्रेट नहीं करता हूं, जो बोल दिया तो बोल दिया। वाल्मीकि सुमंत्र के मुंह से लिखते हैं कि दोनों परिस्थिति में जब राम को पता चला जंगल जाना है, और जो राम को पता चला है राजा बनना है, दोनों परिस्थिति में राम की क्या मुख में क्या एक्सप्रेशन था, वाल्मीकि की भाषा में सुनिए। राहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। सुमंत्र की मुंह से वाल्मीकि लिखते हैं कि जब मैंने उसको बुलाने गया कि तुम्हें राजा बनना है, भाई आजकल भारत में काफी इलेक्शन का माहौल चलता है, अमेरिका में भी आप देखते हैं किसी को गवर्नर का पोस्ट मिल जाए, प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाए, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिल जाए, क्या हालत होती है, जिनको नहीं मिलता उनकी क्या हालत होती है। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, लोग तो राजा बनने के लिए अपने पिताओं को भाइयों को कत्ल कर डालते हैं, पति को बच्चों को मार डालते हैं। सुमंत्र कहते हैं कि जब मैंने उसको ये सूचना देने गया कि तुम्हें राजा बनना है, और दुर्भाग्य से मुझे ही सूचना देने की जरूरत थी कि तुम्हें वन जाना है, दोनों सूचनाओं के समय राम का एक्सप्रेशन एक जैसा था, ना कोई हर्ष में उत्पन्न था, ना खुशी में लोटपोट था, ना जंगल जाने के नाम पर दुख में मुंह में कोई तिल भर कहीं दुख की निशानी थी। दिव्यों सज्जनों, शायद आपको समझ में नहीं आई क्या बात है। गीता में कृष्ण अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, बताइए योगी का क्या लक्षण होता है, स्थितप्रज्ञ का, सन्यासी का क्या लक्षण है। तो कृष्ण लिखते हैं, बताते हैं गीता में, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो सुख में उछले नहीं, दुख में टूटे नहीं, अच्छे और बुरे हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख, हर परिस्थिति में जिसका मन और शरीर एक जैसा बना रहे, वही व्यक्ति योगी होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। ये थ्योरी है। रामायण में राम का चरित्र उसका प्रैक्टिकल है। जो जीवन में सबसे खुशी के मोड़ पर भी कोई खुशी नहीं थी, सबसे ज्यादा दुख के समय पर भी कोई मुंह में दुख नहीं था, दोनों परिस्थिति में एक जैसा रिएक्शन था, ये स्थित प्रज्ञता का अनुभव है। आजकल राजा लोग क्यों, राम राज्य इतना प्रसिद्ध है देवियों सज्जनों, क्यों भारत में हर कोई राम राज्य को कंपेयर करता है, किसी भी शासन को राम राज्य से क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि राम का चरित्र आप देखेंगे। कवि भवभूति लिखते हैं, जब राम को सीता को छोड़ना पड़ा क्योंकि सीता के नाम पर समाज में लोग व्यभिचार करने लगे, उनको समाचार मिला तो उन्होंने सीता को छोड़ने का निर्णय लिया। तब वो बोलते हैं सीता को त्यागते समय, स्नेहम दयां च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। अगर मुझे अजय राजा होने के नाते प्रजाओं को पालन करने के लिए अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसके लिए अगर मुझे अपना प्रेम, अपना सुख, अपनी दया, जो कि मेरा नेचुरल क्वालिटी है, इवन अगर मुझे अपनी जानकी को जो जीवन से भी ज्यादा प्यारी है छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि प्रजाओं का कल्याण राजा के लिए सर्वोपरि है। अगर किसी भी कारण से प्रजाओं में करप्शन आता है, प्रजाओं में भ्रष्टता आती है, प्रजाओं में दुख आता है, तो मैं उस सब कारण को दूर करने को तैयार हूं, अपने जीवन से लेकर मेरे प्रियतमा तक छोड़ने को तैयार हूं। शायद मॉडर्न एज के लोगों को कम समझ में आएगा। लोग जब आरोप लगा देते हैं कि राम ने क्यों छोड़ा, वो इसीलिए समझ में कम आता है कि क्योंकि अगर हमें देश चलाने को मौका मिले तो पत्नी के लिए तो हम आधा देश बेचने को भी तैयार बैठे मिलेंगे, बच्चों के लिए पूरा देश को बेचने को तैयार मिलेंगे। हमारे लिए देश अपने बीवी बच्चों की सुख सुविधा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी शासक, कहीं का भी शासक हो, ऐसे माहौल में जब पॉलिटिशियन या रूलर अपने फायदे के लिए, बच्चों के, पति के, घर परिवार के फायदे के लिए एज ए प्रोफेशन देश को चलाता हो, ऐसी पॉलिटिकल माहौल में ये समझना कोई राजा शादी क्यों नहीं किया, कोई राजा पत्नी को क्यों छोड़ दिया, कोई राजा अपने बच्चों को बलि क्यों चढ़ा दिया, ये समझ पाना मुश्किल होगा। और छोटे दिमाग में जो भी फिरेगा वो अपने सेल्फिश आइडियाज को बेस बनाकर जो भी आप कंक्लूड करेंगे। सुख में और दुख में हर परिस्थिति में एक जैसे वाले लोग, ऐसा नहीं कि उनको कोई दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, सुख नहीं होता है, पर अगर आप राजा हैं, रूलर हैं, तो आपको कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ता है। राम की भाषा में वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हसि। भवभूति जिन्होंने राम उत्तर रामचरित लिखा, लिखते हैं जो महात्मा होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कॉमन आदमी के लिए। द वे वी रिएक्ट व्हेन वी आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस, द ग्रेट सोल्स आर नॉट रिएक्टिंग दैट वे, सो समटाइम इट इज कंफ्यूजिंग। तो कहते हैं कि जो महान आत्माएं होती हैं वो उनका हृदय, जो दिल है, कभी कभी पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है। समटाइम इट इज हार्डर देन ए स्टोन, और कभी कभी मृदुनी कुसुमादपि सॉफ्टर देन ए रोज फ्लावर, कभी कभी किसी फूल से भी कोमल होता है। जहां जरूरत पड़ती है तो फूल से भी कोमल बन जाते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है दुष्टों को, बुरे लोगों को सजा देने की या किसी ऐसे डिसीजन लेने की जो अपने को नुकसान पहुंचाए, उस समय वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। ये महान लोगों का चरित्र है, आम आदमी को समझने में टाइम लगता है। देवियों सज्जनों, एक छोटी सी और इंसिडेंट आपको सुनाएंगे, क्योंकि 30-40 मिनट में कितना राम के बारे में आप बताएंगे, पर जो अच्छी अच्छी चीजें आपको पता है। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को निकल पड़े, पिता की जो भी उनका प्रॉमिस था उसको फुलफिल करने के लिए। भरत तब अयोध्या में नहीं था, वो अपने मामा के घर था। उसको लाने के लिए लोग गए, उसको लेकर आए, किसी को पता नहीं था, भरत को भी नहीं बताया भाई क्या हुआ है। भरत घर आया, देखा सब मातम मनाए हुए हैं, पिताजी कभी बेहोश हैं, कभी होश में हैं, कभी पागल की तरह गुनगुनाते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, बीमार रहते हैं, मेंटली बहुत ट्रबल में है, सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, किसी को पूछो क्या हुआ कोई बताने को तैयार नहीं है। दौड़े दौड़े मां के कमरे में गए, मां से पूछा क्या हुआ। माता ने बोला तुझे खुशी मनाने की टाइम आ गया, अब तुम राजा बन गए हो। भरत ने कहा राजा तो राम को बनना है, मैं क्यों बनूंगा भला, ये तो कोई मजाक क्यों कर रहे हो। नहीं, कई कई ने पूरी हिस्ट्री सुना दी, क्या क्या किया। सोचा सुनकर बेटा खुश होगा, बोलेगा कि मां ने कितनी बड़ी मेरे लिए सैक्रिफाइस की है। पर भरत का रिएक्शन उल्टा था, बोले कैसी मां हो, काश मुझे तेरी जैसे मैं पैदा ही नहीं होता तुम्हारे पेट से। अब तो मुझे घृणा आती है तुम्हें मां कहने में। मां के समझाने पर, लोगों के समझाने पर भरत राजा बनने को तैयार नहीं है। राम भाई है, उसका राइट है, उसी को बनना चाहिए। लोग समझा रहे हैं पर भरत नहीं माने, चल पड़े राम को समझाने के लिए। तो राम चले तो पीछे पीछे उनके मंत्री भी चल पड़े, ऋषि भी, वशिष्ठ आदि ऋषि भी चल पड़े, माताएं भी चल पड़ी, प्रजा भी चल पड़े, सब चल पड़े कि चलिए सब हम राम को दोबारा समझाते हैं, क्योंकि भरत तो राजा बनना नहीं चाहते, शायद राम मान जाए, दोबारा वापस आ जाए। भरत आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे उनकी सेना, उनकी माताएं, उनके मंत्री, उनकी प्रजा, लाखों की संख्या की भीड़ जा रही है जहां पर राम विश्राम कर रहे हैं, चित्रकूट में। लक्ष्मण ने दूर से देखा, धूल उड़ रही है घोड़ों की, हाथियों की, प्रजाओं की, लोगों की। पेड़ पर चढ़ के देखा, भरत दौड़ रहा है, पीछे पीछे लाखों लोग हैं। उसको लगा शायद मां ने तो षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके राम को जंगल भेजा, शायद भरत भी उसी का ही बेटा है, मारने आ रहा होगा कि परमानेंटली इलाज कर दें कि दोबारा बचे ही नहीं। तो गुस्से में लाल पीला नीचे आया, बोला देखा, देखो मां ने क्या किया, और बेटा सेना लेकर के आ रही है मारने के लिए, तैयार हो जाओ। राम मुस्कुराए, बोले चुप रहो, तुम ज्यादा ही टेम्पर में रहते हो, सुना करो। भरत पहुंचा, पैरों में गिर गया राम के। राम ने उठाया, दोनों एक दूसरे को आलिंगन किया, आलिंगन मतलब एक दूसरे को हक किया, एक दूसरे के ख्याल पूछे। राम ने पूछा, बड़ा कमजोर दिख रहे हो, वैसे ही जैसे ही मां बाप भाई बहन अपने किसी प्यारे व्यक्ति को बहुत दिनों के बाद देखने पर पूछते हैं, कितना भी मोटा होकर आया हो, पूछते वही है कि कितने पतले हो गए हो। राम ने पूछा कितना पतले हो गए हो। भरत ने पूछा कि आप राज्य छोड़कर क्यों आए, दोनों की चर्चा चली। देवियों सज्जनों, भरत राम को समझा रहे, आप वापस चलो, मेरी मां ने जो गलती की मैं उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, आप वापस चलो। राम भरत को कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, राम जीवन में जो बात बोलता है एक ही बार बोलता है, जो शपथ लेता है एक ही बार लेता, आप तो ये सवाल नहीं है। राम भरत की लड़ाई वाक युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध मतलब एक दूसरे से बहस चल रहा है, किस बात की देवियों सज्जनों, कि तुम राजा बनो। भरत कहता है तुम बनो। हमारे आर्य समाज के एक बड़े विद्वान है इसी बात को कहकर बात को विराम देंगे। तो वो अपनी कथा में कहा करते थे, बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए रामचंद्र देहलवी, उनका नाम भी रामचंद्र ही था, मेरठ के थे, देहलवी करके। तो वो लिखते हैं कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, तो उनके ऊपर वाले स्लीपर में कोई आदमी सोया हुआ था, रामचरितमानस के दोहे पढ़ रहा था। बड़े सुंदर आवाज थे उसके, जैसे अभी आप सुन रहे थे स्मृति जी और बच्ची से प्रिशा से कितना सुमधुर स्वर में वो गा रहे थे दोहों को, ऐसे ही व्यक्ति बड़ा मीठे आवाज में दोहों को गा रहा था पूरे ट्रेन में। तो जब इलाहाबाद स्टेशन आने का टाइम हुआ, थोड़ा पहले वो आगरा से निकले थे, वो आदमी ऊपर से नीचे आया, बैठा तैयारी करने लगा, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि आपको कहां उतरना है, बातचीत हुई कि इलाहाबाद उतरना है, ये आपका घर है यहां पर? ना नहीं, मेरा घर आगरा में है। तो यहां कैसे, क्या बातचीत चली? बोले आज कोर्ट में मेरा तारीख है तो जाना पड़ रहा है। तो बताया कि कोर्ट में क्यों तारीख है, क्योंकि हम चार पांच भाई हैं, हमारे जो पुश्तैनी जमीन है उसको लेकर खूब लड़ाइयां चल रही है, मारपीट भी हुई है, एक भाई को भतीजे ने तो कत्ल भी कर दिया है, तो अब वो केस चल रहा है, अब वो तारीख आता रहता है, जाना पड़ता है, तो जा रहे हैं। रामचंद्र जी ने पूछा, अब तो बड़े राम के भक्त लगते हो, राम के दोहे पढ़ते, इतने सुमधुर पाठ करते हो, तो कुछ जिंदगी में उतरा नहीं अभी तक, सिर्फ मुंह मुंह में गाते रहते हो? देवियों सज्जनों, महान आत्माओं का जीवन चरित्र सीखने के लिए होता है, जीवन में उतारने के लिए होता है। व्यक्ति जब जीवन में उतार नहीं पाता है तो वो एक्सक्यूज ढूंढता है कि मैं आम आदमी हूं और ये भगवान हो गया, मैं कैसे उसकी तरह हो जाऊं, तो मैं मिस्टीरियसली उसकी पूजा करने लगता हूं क्योंकि मुझे कोई बताए नहीं कि राम किसी के तरह आचरण करो। जब मैं किसी महान आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं उसको ईश्वर के कोटि में ले जाऊं, जिससे कि कोई दोबारा पूछे ही नहीं कि इसको क्यों इसके तरह नहीं व्यवहार करते हो। भरत और राम एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए लड़ते हैं, राम और भरत के भक्त एक दूसरे के गला काटने के लिए मरते हैं, तब भी राम के हम भक्त कहलाते हैं। देवियों सज्जनों, ऐसे ही है, जैसे भारत में हर पढ़ा लिखा आदमी आपको बोलेगा हमारे यहां महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते, श्लोक के ऊपर श्लोक डाल जाते हैं, और सबको पता है भारत में मां बहन बेटियों की क्या दशा है, कितनी दुर्दशा है, कैसे सेकेंडरी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के रूप में उनको जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देवियों सज्जनों, महात्माओं के जीवन को अगर हम पढ़ें, समझें, जीवन में कुछ उतार सकें, तो वो धन्य हो जाता है। अगर नहीं तो फिर तो चित्र पूजा के बहाने हम पूरी जिंदगी पाखंड में बिता देते हैं। आज की शुभ दिन पर 5 तारीख को रामनवमी मनाएंगे, शुभ दिन पर हम उस परम पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि उनके जीवन से मैं और आप सब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीखें, जीवन को बदलाव में हेल्प करें, न कि किसी के मूर्ति और चित्र बना करके वहां फूल अर्पित करके अपने को वही पापी के पापी बना के बाकियों को भगवान बनाते फिरते रहें। इससे अच्छा है हम जिनको भगवान मानते हैं उनके चरित्र से कुछ सीखे, अपने जीवन को बदले। इसी सुंदर अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, आप सबको बहुत बहुत सुंदर बधाइयां हो। आप जरूर उसको सेलिब्रेट करें, राम के जीवन को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, राम के जीवन को अपने छोटे बच्चों को भी सिखाएं। बहुत कुछ आपके नेक्स्ट जनरेशन को सीखने को मिलेगा राम के चरित्र से, जो खास करके NRI हैं, भारत से बाहर दूसरे देश में रहते हैं, उनको और कुछ सिखाएं न खाएं, रामायण के राम की चरित्र तो जरूर उनको बच्चों को जरूर सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।